ओम शांति। हमारे समक्ष मंचासीन अति आदरणीय राजयोगिनी बीके कमलेश दीदी जी को सबसे पहले मैं हमारे ब्रह्मकुमारी बहनों से अनुरोध करूंगा कि विशेष उनको गुलदस्तों से उनका स्वागत हेतु भेंट करें। वैसे तो कल स्वागत सत्र से ही हम दीदी जी से रूबरू होते आ रहे हैं, कल से ही सुनते आ रहे हैं, फिर भी आज इस इवनिंग सेशन में आदरणीय दीदी जी मुख्य वक्ता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं, तो विशेष करके आज इनका विषय रहेगा वर्क लाइफ बैलेंस। तो पुनः आप सभी के समक्ष में इनका संक्षिप्त रूप में थोड़ा परिचय रखना चाहूंगी। आदरणीय दीदी जी, आप बचपन से ही ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं और विशेष करके आपके जीवन में जो आध्यात्मिकता की रुझान आपके प्रति है विशेष, तो इसके कारण 1983 में आपने अपना पूरा जीवन ब्रह्म कुमारी में समर्पित किया। तो विशेष करके अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से विशेष ऑनर्स में बीए किए हैं और साथ साथ सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप में कोर्सेस भी दिए, और अभी फिलहाल वर्तमान समय में आप शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ब्रह्मा कुमारीज के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हैं और साथ साथ यूथ विंग के कोर कमिटी मेंबर भी हैं और साथ साथ सेंटर क्रूज ईस्ट ब्रांच ऑफ ब्रह्मा कुमारीज मुंबई के इंचार्ज के रूप में सेवारत हैं। और इसके साथ साथ विभिन्न ब्रह्मा कुमारीज के सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेस आपने डेवलप किए हैं, जैसे फाइंडिंग कंपास ऑफ योर लाइफ, उदय ए न्यू हॉरिजन, हैप्पी जर्नी, एग्जीबिशन बुक जैसे, और अन्य कॉरपोरेट सेक्टर में भी वेरियस ट्रेनिंग कोर्सेस में आपने जैसे विभिन्न प्रोग्राम्स किए हैं, और जैसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, विशेष करके हारमोनी इन रिलेशनशिप्स, अन्य ऐसी विशेष ट्रेनिंग आप दे रहे हैं। तो अब हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे तो हम सब इनसे लाभान्वित होंगे। ओम शांति।
थैंक यू दीदी लवेल। ओम शांति। सुबह से ही जैसे बाहर पानी की बरसात है और यहां ज्ञान की बरसात है, बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो नॉलेज, वो जो जेम्स ऑफ नॉलेज हैं वो आपको मिल रहे हैं, जिनसे आपकी बुद्धि रूपी झोली भरती जा रही है। तो अभी का जो विषय है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। यूं तो हम जानते हैं कि वर्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। वर्क और जीवन जुड़े हुए हैं ना, जीवन में कार्य ना हो तो जीवन कैसा। लेकिन स्टिल ये जो विषय है ये आज की इस मॉडर्न लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कुछ विचार मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। वाई, व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस, उससे क्या होगा। वास्तव में देखा जाए हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है, और जो हमारी कॉन्फ्रेंस का विषय है एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट के लिए ये वर्क लाइफ का बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना बैलेंस होगा उतने ब्लेसिंग्स मिलेंगे। और अभी आप सुन रहे थे ब्लेसिंग्स के बारे में, और जितने ब्लेसिंग्स होंगे उतनी हमारी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। ब्लेसिंग प्रमोट्स गुड हेल्थ एंड दैट हेल्थ लीड्स टू हैप्पीनेस एंड दिस इज व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल कि हम वर्क और लाइफ का बैलेंस रखें। बट लेट अस लुक एट द वर्ल्ड टुडे। टुडेज वर्ल्ड इज ए बंडल ऑफ कोर्स। आज का संसार कैसा है आप देखिए। एक तरफ टेक्नोलॉजी, बड़ी तीव्र गति से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और हम ज्यादा से ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो चुके हैं। इज इट राइट? हम कैरियर ओरिएंटेड हैं। किसी का कैरियर कैसा है, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर में, कोई कंप्यूटर में एक्सपर्टीज है, हम उसको बहुत थोड़ा ऊंचा स्थान देते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर्स में वो उसकी एक्सपर्टीज है। लेकिन वही कोई यदि व्यक्ति घर में रहता हुआ भोजन बनाने में एक्सपर्ट होगा तो उसको इतना इंपॉर्टेंट स्थान मिलेगा? मिलेगा? बताइए, मिलेगा? नहीं। और हम कैरियर के पीछे भाग रहे हैं क्यों? एवरी नाउ एंड देन टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट गति से चेंज हो रही है। आज आप देखिए जो हमारे मोबाइल में भी, आज पहले जब हमने मोबाइल शुरू में आया और आज हर दो साल के बाद हम सोचते हैं नया मोबाइल होना चाहिए, कोई तो समझता है एक साल के बाद ही नया होना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत रैपिड चेंजेस हैं। दिस इज व्हाई पीपल आर मूविंग वेरी फास्ट, दे आर रनिंग वेरी फास्ट। और वो फास्टनेस के कारण वो अपने जीवन के अंदर उसकी स्थिति क्या होती है, जैसे आप देख रहे हैं कि अपने लेजर टाइम के अंदर भी वो सारा दिन काम करता रहता है। सारा दिन उसकी उंगलियां जो है कंप्यूटर पे, मोबाइल पे चलती रहती हैं। और जो वर्क और लाइफ का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एंड द रिजल्ट इज व्हाट वी आर सीइंग टुडे। वी हैव डेवलप्ड द हैबिट ऑफ मल्टीटास्किंग। सोच कुछ रहे हैं, सुन कुछ और रहे हैं, देख कुछ और रहे हैं। एम आई राइट? इज इट नॉट द सिचुएशन ऑफ मोस्ट ऑफ अस? हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ, कर कुछ और रहे हैं, देख कुछ और रहे हैं, सुन कुछ और रहे हैं और हम समझते हैं कि शायद हमारे पास बहुत ज्यादा कार्य कुशलता आ गई है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि उसके द्वारा हम बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे अपने अंदर उसको विकसित कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आता है वो बीमारी हमारे सामने आती है। आपको मालूम है पार्किंसन, इंडिया में पहले ये बीमारी इतनी नहीं थी जितनी ये बीमारी आज जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। कारण क्या है? वन ऑफ द रीजन इज दिस, क्योंकि हमने उसमें बैलेंस मेंटेन नहीं किया, क्योंकि एक दूसरे के पीछे हम कंपटीशन में लगे हुए हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन के अंदर जो हमारा कार्य है, जो हमारा प्रोफेशन है, उसके अंदर हम एक बैलेंस मेंटेन करें। वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक साइड वर्क है, एक साइड मेरी लाइफ है। आमतौर से व्यक्ति क्या करते हैं, अपने लेजर टाइम को भी वर्क में ले जाते हैं और जब वर्क प्लेस पर जाते हैं तब उनको क्या होता है, तब उनको लेजर याद आता है, उस समय वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है कि एक व्यक्ति, देयर वाज अ हैप्पी मैन, living with his family, which was comprised of his wife and two children. तो घर में वो चार मेंबर्स वो बहुत खुशी से रहता था. उनके जो बच्चे थे उस व्यक्ति के, वो रोज अपने फादर को देखते थे. When he was going out for the office, उनके घर के बाहर एक बनियन ट्री था. तो जब वो फादर घर से बाहर जाते अपने वर्क के लिए, तो उस बनियन ट्री के पास जाकर वो खड़े हो जाते, और खड़े होने के बाद he will bow down, वो थोड़ा झुकते थे. झुकने के बाद थोड़ा सा समय बिताकर वहां पर, और फिर वो अपने ऑफिस की ओर चले जाते थे कार्य के लिए. सिमिलरली इन द इवनिंग, जब वो आते बाहर घर की ओर आते, तो उसी बनियन ट्री के पास वो खड़े होते और उसी तरह का पोज, खड़े हुए, झुके, फिर ऊपर उठे और फिर घर की ओर बढ़ गए. बहुत दिनों से उनके बच्चे इस बात को नोट कर रहे थे. तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनके बच्चों ने अपने फादर से पूछा, पापा व्हाट डू यू डू, आप रोज घर से बाहर निकलते हैं, रोज जाके पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, झुकते हैं और फिर चले जाते हैं, जब आप वापस आते हैं तब भी आप ऐसा ही करते हैं, तो ऐसा आप क्यों करते हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि जब मैं ऑफिस से आता हूं, तो जब ऑफिस से आने के समय मेरे पास वर्क रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, या जो भी मेरे पास वर्क प्रेशर्स होते हैं, जो भी मेरे प्रोफेशन से संबंधित सारे जो भी कार्य हैं, उसका गार्लैंड मैं जो पेड़ की जो टहनी है उसके ऊपर लटका देता हूं, और फिर मैं घर आ जाता हूं. और जब मैं घर से बाहर जाता हूं और पेड़ के पास जाके जो गार्लैंड मैंने लटकाया था वर्क रिलेटेड बातों का, वो गार्लैंड मैं पहन लेता हूं और मैं ऑफिस चला जाता हूं, आई डोंट मिक्स टू थिंग्स टुगेदर. वाई उसने कहा, मैं दोनों बातों को मिक्स नहीं करता. क्यों नहीं करता? बिकॉज मिक्सिंग टुगेदर प्रोफेशन एंड फैमिली लाइफ यील्ड्स नो रिजल्ट्स. अगर दोनों को आप मिक्स कर देंगे, आप कुछ भी एक क्रिएटिव, आपके पास कोई रचनात्मक सॉल्यूशन या कोई आपको फल मिले, वो नहीं मिलेगा. आमतौर से हम क्या करते हैं, ये हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, है ना, करते हैं ना, हम सारे करते हैं, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां. जो भी हमारे प्रोफेशन में कार्य करते वक्त जो हमें कोई भी प्रेशर्स आते हैं, उनको घर पे ले आते हैं, और घर की जो बातें होती हैं, घर में भी कभी कभी होम फ्रंट पर भी कई ऐसी बातें होती हैं, और उनको हम अपने ऑफिस में ले जाते हैं, ना तो हम वर्क को एंजॉय कर सकते हैं और ना ही अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और ना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. तो व्हाट वी नीड टू डू, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू, क्या करेंगे, बोलिए. दोनों को अलग करेंगे, कर सकते हैं, बात तो सही है, कर सकते हैं. इस एनी अदर वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, दोनों को अलग रख सकते हैं, पॉसिबल है, पॉसिबल है. हाँ, जो हाथ खड़े कर रहे हैं जरा खड़े होके बोलेंगे, यस पॉसिबल है पॉसिबल. अच्छा हाँ, संभव है. अच्छा, कैसे कर सकते हैं? अपने आप को कंट्रोल करें, ऑफिस की चीज ऑफिस में रखें, घर की चीज घर में रखें। हाँ जी बोलिए। ओके फाइन। थोड़ा आगे आके बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि सुना ही नहीं दे रहा। यू मीन टू से कि जो कार्य है वो बिल्कुल डिफरेंट है और फैमिली लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, उनको हमें सेपरेट रखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, थैंक यू। यस यू कैन गिव ए क्लैपिंग। यस वेरी गुड, यू कैन गिव ए क्लैपिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। ये मेरा फैमिली टाइम है, ये मेरा ऑफिस टाइम है, ये मेरा लेजर टाइम है। जैसे आज सवेरे आपने डॉक्टर प्रेम मसंत भाई का एक सेशन सुना, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि एटलीस्ट वीकेंड, एटलीस्ट संडे, उस दिन तो हम बाकी चीजों से ब्रेक दें। आज हमारे पास सबके लिए टाइम है, हर चीज के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन कौन सा टाइम नहीं है, मी टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। वो मी टाइम, व्हाट आई मीन टू से, हम थोड़ा बैठें, थोड़ा शांत होकर बैठें, थोड़ा अपने आप से बातें करें, थोड़ा जो कुछ हमने किया है उस पर थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करें, कुछ अपने आप को देखें। वो हमें, हमारे पास समय है ही नहीं। हम सारा दिन अपने मन को बिजी रखते हैं बहुत ज्यादा। अभी एक कार्य पूरा नहीं होता है और दूसरा थॉट हमारे मन के अंदर चल रहा होता है। ऐसे कहते हैं कि अच्छी हेल्थ की निशानी क्या होती है, जब हेड, हार्ट और हैंड ये इकट्ठे काम करें, फोकस्ड होके काम करें। लेकिन आज क्या हो रहा है, हेड कुछ और सोच रहा है और दिल में कुछ और बातें हैं और हैंड कुछ और कर रहा है। तो इसीलिए हमें इस बैलेंस को मेंटेन करने की बहुत आवश्यकता है। और क्योंकि हम नहीं कर पाते हैं, व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू, क्योंकि हम अनहेल्दी चॉइसेस अपनी लाइफ में करते हैं, अनहेल्दी चॉइसेस, रॉन्ग चॉइसेस। मेरी कैपेसिटी कितनी है और कितना मैं उसको स्ट्रेच कर सकता हूं या कर सकते हूं, हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन हम उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं। आप इलास्टिक होता है, उसकी कैपेसिटी होती है। अगर आप उसको उससे ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, इलास्टिक टूट जाएगा। इसी प्रकार हम कंपैरिजन्स में आके हम एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, एक दूसरे से आगे बढ़ना कोई गलत बात नहीं है, गुड। लेकिन मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मेरी क्षमता कितनी है, कितना हम अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो क्योंकि हम रॉन्ग चॉइसेस करते हैं या हम अनहेल्दी चॉइसेस करते हैं, एंड वी कीप ऑन डूइंग ऑल टाइम वर्क, उसके बारे में सोचते हैं। मैं देखती हूं बहुत सारे यंगस्टर्स को आते जाते, सारा दिन उनके हाथ में क्या होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन में सब कुछ है, पूरा ऑफिस उसके अंदर है, वो सारा दिन उसी के अंदर लगे रहते हैं। और जो उनको एक आराम मिलना चाहिए, जो उनकी एक हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, हैप्पी लाइफ होनी चाहिए, वो लाइफ नहीं होती है। सो वी हैव टू मूव फ्रॉम ATW टू ATM। वी हैव टू मूव फ्रॉम ATW टू ATM। वॉट इज दिस ATM? एंड ATW ऑल टाइम वर्क। थोड़ा मन भी मशीन है, वो हम मशीन चलाते ना, अगर हम कोई भी मशीन चलाते हैं, यहां पर बहुत सारी मशीनरी पड़ी है, उसको भी थोड़े रेस्ट की जरूरत होती है, मन को भी तो थोड़ा रेस्ट की आवश्यकता है। तो ऑल टाइम वर्क से हम कहते हैं ऑल टाइम मेडिटेशन। व्हाट इज ऑल टाइम मेडिटेशन? जो मन को रिलैक्स करता है, जो मन को एक काम करता है, मन को सही दिशा देता है, दैट टाइप ऑफ मेडिटेशन, जिसको हमारे यहां कहा गया है कर्म योग। योग केवल जो आप सेशन राजयोग के सीख रहे हैं, केवल वही योग नहीं है, लेकिन एक कर्म योग भी है कि कर्म करते हुए हम कैसे अपने मन की स्थिति को स्टेबल कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है ना, वी आर नॉट एबल टू स्टेबलाइज अवर टाइम एंड एनर्जी बिटवीन द प्रोफेशन एंड माय पर्सनल लाइफ, विच इज वेरी एसेंशियल। सो बैलेंस इज द की ऑफ लाइफ। आपने बचपन में, बहुतों ने एक, जब हम लोग खेलते थे ना गेम्स, एक रेस होती थी, मालूम है वो रेस कौन सी होती थी? चम्मच और नींबू। वो चम्मच में नींबू रख के दौड़ना होता था। याद है किसने खेली थी वो रेस अपने बचपन में? बहुतों ने खेली होगी, है ना? और दूसरी एक और रेस हुआ करती थी, थ्री लेग्ड रेस, है ना? वो क्या करते थे, वो एक एक की टांग बांध के और दौड़ना है। तो ऐसे ही अब उसमें क्या था, बैलेंस मेंटेन करना है। आप सोचिए इतना बैलेंस मेंटेन करना है कि आपको दौड़ना भी है और चम्मच में से नींबू जो है वो गिरना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही आपने देखा होगा जो लोग रस्सी पर चलते हैं, वो कैसे अपना बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो इसी प्रकार लाइफ के अंदर जो है, हमें बैलेंस को मेंटेन करना है। सो व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस? वर्क लाइफ बैलेंस इज, इट इज अ बैलेंस बिटवीन माय प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी मेरी कार्य से संबंधित, जो भी मेरी जवाबदारियां हैं, जो भी मुझे मिला है, और जो मेरे अपनी लाइफ से संबंधित मेरे अपने प्रति जो जिम्मेवारियां हैं, उन दोनों के अंदर एक संतुलन बनाए रखना, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे रोल्स निभाने पड़ते हैं। वी हैव टू बी ए डिफरेंट पर्सनैलिटी एट अ डिफरेंट टाइम। दिस इज वाई वी ऑलवेज से कि एक व्यक्ति का जीवन चार एरियाज में घूमता रहता है। पहला एरिया कौन सा है? वो है उसके रोल्स। डिफरेंट रोल्स हैं। आप देखिए, सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग हाउ मेनी रोल्स यू प्ले? हाउ मेनी रोल्स यू प्ले? कैन यू काउंट? How many roles you play since morning till evening? आप कितने roles play करते हैं? हो सकता है सवेरे आप अपना दिन शुरू करें एक मदर के रूप में, उसके बाद दिन कहां जाकर समाप्त होता है? और कितने roles होते हैं बोलिए, बहने बोले कितने role होते हैं? आपने अपना दिन शुरू करा एक मदर के रूप में, उसके बाद बस यही समाप्त हो जाता है। उसके बाद maybe as a sister, maybe as a wife, huh? Maybe as a neighbor, maybe as a friend, maybe as a working woman, maybe as a manager of a company, right? मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप देखिए मुझे कितने रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। इसी प्रकार दूसरा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है माय रूटीन्स, उनको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम सबके डेली रूटीन्स बने हुए हैं जो हमें पूरे करने ही पड़ते हैं। हम जब कभी किसी को कहते हैं कि आप आइए, हमारे पास सुबह का क्लास होता है, सुबह 7 बजे का क्लास होता है या 6:30 बजे का क्लास होता है, तो कहते हैं कि दीदी नहीं, हमें ये करना है, ये जाना है, वो जाना है, क्योंकि रूटीन है ना वो। एंड थर्ड एरिया ऑफ लाइफ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू माई सेल्फ, रिलेटेड टू माई फैमिली, रिलेटेड टू सोशल लाइफ, रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको मुझे पूरा करना है और किसी को भी मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हूं। और चौथा एरिया ऑफ लाइफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेशंस। आप ह्यूमन लाइफ को रिलेशन से अलग कर सकते हो? नॉट एट ऑल, नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य के लिए कहा ही गया है कि मैन इज ए सोशल बीइंग। तो इन चारों एरियाज में हमारी लाइफ जो है घूमती रहती है, घूमती रहती है। वी हैव मिक्स्ड रोल्स टू प्ले, और उस मिक्स्ड रोल्स में मुझे उस वर्क के साथ वो जो मुझे कार्य मिला हुआ है, जो मेरी जवाबदारी है और जो मुझे अपना जीवन जीना है, उन दोनों के अंदर बैलेंस मेंटेन करना वो कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? एंड दैट टू इन दिस मॉडर्न लाइफ वेयर एवरीथिंग इज रनिंग वेरी फास्ट, एवरीथिंग इज चेंजिंग वेरी फास्ट, हर चीज बहुत जल्दी बदलती हुई नजर आ रही है, उसके अंदर मैं कैसे इसको मेंटेन करूं? ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन, और इसी पर आज हमारा मेन फोकस रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, कहते हैं लाइफ क्या है, लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसिकल, और अगर इसमें बैलेंस मेंटेन करना है यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, तभी बैलेंस मेंटेन होगा। आप देखिए एक गाड़ी जो होती है, उस गाड़ी के जो गाड़ी जो है वो बहुत, एक फोर व्हील्ड व्हीकल, वो बहुत फास्ट चलती है, स्मूथली चलती है जब उसके चारों व्हील्स ठीक से अलाइनमेंट में होते हैं। अगर वो व्हील की अलाइनमेंट नहीं होगी तो वो फोर व्हील्ड व्हीकल वो ठीक से चल नहीं पाएगी। अगर वो चारों ही अलाइनमेंट में है वो फास्ट भी चलेगी और स्मूथ भी चलेगी। इसी प्रकार हमारे जीवन के ये चार एरियाज हैं, इनमें यदि हम बैलेंस मेंटेन करेंगे तब ये जीवन रूपी गाड़ी हमारी जो है वो अच्छी तरह से चलेगी। अभी थोड़ा सा नजर इस बात पर डाल लेते हैं कि क्यों नहीं हम बैलेंस मेंटेन कर पाते। हम सब चाहते हैं, चाहते हैं, यस और नो? यस, सब चाहते हैं, बट व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेंटेन? व्हाई? We don't have much time. This is why I am just sharing my thoughts with you. The reason being is, जो सबसे बड़ा factor है वो है stress, accumulation of stress. और हमको आदत पड़ गई है छोटी 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 बातों का stress लेने की, छोटी छोटी बातों का। जरा सा किसी ने मेरे मन पसंद से विपरीत कुछ कह दिया और मुझे टेंशन हो गई। हम इतने सेंसिटिव हो चुके हैं। हमारी दादी कहा करती थी, दादी शान की, बी सेंसिबल बट नॉट सेंसिटिव। नेचर हमने इतनी ज्यादा, क्योंकि इमोशनल इंस्टेबिलिटी जिसका आज फर्स्ट सेशन में डॉक्टर प्रेम मसंत भाई ने आपको रेफरेंस दिया, जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है वो हमारी बहुत बढ़ चुकी है। वी हैव नो स्ट्रेंथ टू कंट्रोल अवर इमोशंस. और जब इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं, नो कंट्रोल ओवर अवर रिएक्शंस, ओवर अवर एक्शंस. उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहा और स्ट्रेस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. हमारा एक शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग का एक एग्जीबिशन बुक है जिसका नाम है शुभ यात्रा. उसमें एक पिक्चर है स्ट्रेस का, बाय बाय स्ट्रेस. मैं आप सबको कहूंगी कि वो बुक में, यहां बुक मैं समझती हूं शायद अवेलेबल होगी, यहां पर होगी काउंटर पर, अब वो बुक जरूर लीजिएगा या उस बुक का वो पिक्चर जो है बाय बाय स्ट्रेस को जरूर देखिएगा. उसमें हमने बड़ा अच्छा तरीका बताया हुआ है स्ट्रेस को दूर करने का. क्योंकि आमतौर से जब स्ट्रेस शब्द कहते हैं हमारे मन में नेगेटिविटी आती है ना. और ये भी मैं समझती हूं आप में से बहुतों को ये बात मालूम होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो स्ट्रेस शब्द है वो वायर्स की मेटालिक कैपेसिटी को बताने के लिए यूज किया जाता था, ना कि ह्यूमन स्टेट ऑफ माइंड. और आज ये शब्द जो है हमारे मानव मन से ये जुड़ गया है कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बड़ी टेंशन है, बहुत प्रेशर्स हैं. क्योंकि जल्दी से बहुत प्रेशर एक्यूमुलेट हो जाते हैं. और उसने उसका एक पॉजिटिव मीनिंग बताया है कि अगर स्ट्रेस शब्द बुद्धि में आता है तो आप जो है वो जो उसका पॉजिटिव मीनिंग है आप उसको याद कर लीजिए. आप जानना चाहेंगे, बता दूं उसको. एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, टी स्टैंड फॉर ट्रैफिक कंट्रोल. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं उसमें क्योंकि इतना समय नहीं है. एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, टी फॉर ट्रैफिक कंट्रोल, आर फॉर रीडिजाइनिंग, ई फॉर एक्सरसाइज, एस फॉर शेयरिंग, एंड लास्ट एस इज फॉर एक्सेप्टेंस. ये है स्ट्रेस का रियल मीनिंग. कैसे ब्रह्मा कुमारी में जो हमें परमात्मा ने ज्ञान दिया कि हम नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव में बदल सकते हैं, उसका एक वो एग्जाम्पल है. तो हम स्ट्रेस स्ट्रेस कहकर बार बार अपने आप को स्ट्रेस नहीं कर लें, हम उसको चेंज करना सीखें. लेकिन इसी के कारण आज हमारे जीवन के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है. और दूसरा बड़ा फैक्टर है वो है कंपटीशन एंड कंपैरिजन. अच्छा ये हो गया, ये आगे बढ़ गए, इनको मान मिल गया, इनका नाम आ गया, बहुत कंपैरिजन और कॉम्पिटिशन हो गए हैं. पहले लोग क्या होता था, अगर पड़ोसी का बच्चा कोई स्कॉलरशिप लेता था तो सारे आसपास वाले खुश होते थे, उसको सेलिब्रेट करते थे. और आज क्या हो गया है, अगर कोई पड़ोसी का बच्चा वो अगर उसको हायर रैंक मिल गया, कोई उसको इज्जत मिल गई, उसको स्कॉलरशिप मिल गई, कोई उसको अवार्ड मिल गए, ऑनर्स मिल गए, तो मन में होता है कि मेरे बच्चे का ऐसा होता तो कितना अच्छा होता. इमीडिएटली वो फीलिंग आती है और उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं. देन कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रोडिक्शंस. देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हमेशा रहते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप बात बात पे संघर्ष करो और बात बात पे आप कॉन्ट्रोडिक्शन में आओ. इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हम एक होकर रह सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे मन में ये भावना हो एक दूसरे को स्वीकार करने की, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की. एंड एक और बड़ा देन है आज की इस मॉडर्न लाइफ का जिससे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, वो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स. बहुत जगह ऐसा ही है हमें मालूम है, जैसे आजकल लोग बहुत वर्क फ्रॉम होम अभी भी बहुत लोग करते हैं, उनका काम शुरू करने का भी कोई समय नहीं, खत्म होने का भी कोई समय नहीं. जब मर्जी ऑफिस से कॉल आ जाती है, बॉस से कॉल आ जाती है, और कई लोग जो हैं ऐसे इससे बहुत परेशान हो चुके हैं. वो कहते हैं इससे अच्छा तो वो था कि जब हम ऑफिस में जाके काम करते थे कम से कम कोई टाइम तो फिक्स था. और एक दूसरा तरीका है कि आजकल जो है पैकेजेस हैं, पैकेजेस में क्योंकि आपको एनुअल पैकेजेस मिलते हैं, उस पैकेजेस में आपको इतना वर्क करके देना है, वेदर यू वर्क फॉर 8 आवर्स और यू वर्क फॉर 18 आवर्स, उससे भी बहुत स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है। एंड देन एक और फैक्टर है, वो है ग्लोबल इकोनॉमी। तो इस तरह के कई चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है कि लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 शब्द हैं, वो हैं पॉज, ऑब्जर्व एंड प्रोसीड। जब कभी इस तरह का इम्बैलेंस होता है, आपने देखा होगा, या तो रेस्टलेसनेस होगा, या तो मन स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, या मन कहीं फोकस नहीं हो पाता है, मन में थोड़ी सी किसी प्रकार की चिंता पैदा होती है, ऐसे कई प्रकार के दबाव होते हैं, तो उस समय जस्ट टेक ए पॉज, पॉज, से टू योर माइंड, जस्ट ओ माइंड जस्ट चिल। जैसे हम कोई मशीन पर काम करते हैं, अब मान लीजिए मैं कोई YouTube में देख रही हूँ कोई प्रोग्राम, और कोई फोन आ जाता है, कोई मेरे से बात करने लगता है, तो हम बटन दबा देते हैं, वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है, होता है ना ऐसे। इसी प्रकार मुझे क्या करना है, ओ माइंड जस्ट चिल, ये पॉज बटन दबा दो, हे मन तू शांत हो जा, अपने मन को कहो, क्योंकि हमने कभी मन को पढ़ने की कोशिश नहीं की, कभी हमने मन पर अटेंशन नहीं दिया, कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि मन क्या चाहता है, मन क्या खाता है, मन कहां जाता है। और दूसरा ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करो, क्यों मेरे मन में, क्यों आज इतना असंतुलन हो गया है, क्यों मेरा मन अशांत हो रहा है, क्या रीजन है। जब आप वो शांत होकर सोचेंगे, जैसे अभी आपको बता रही थी विनीता बहन, कि किस तरह से हम जब सोचते हैं हमारे अंदर वो परखने की शक्ति आती है, मेडिटेशन जब करते हैं तो परखने की वो शक्ति आती है, तो हम अपने आप को देख पाएंगे। एंड देन प्रोसीड, ये हमें जो है मेथड जो है अपनाना होगा, और व्हाट वी शुड डू, लव योर वर्क एंड वर्क प्लेस, अपने कार्य से प्यार करो, अपने वर्क प्लेस से प्यार करो, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। कई लोग क्या समझते हैं, जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, शायद ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं ना, तो हम ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ दे रहे हैं, दे ऑलवेज थिंक हम जो है उनको देते हैं और उनको हम करते हैं, तो कुछ तो हमको मिलना चाहिए, और हम हमेशा इस लाइन पर सोचते हैं, आई नो व्हेन आई एम गिविंग समथिंग व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। और हम ये समझते हैं कि हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए, व्हाट एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन इन विच आई एम वर्किंग। जहां मैं काम कर रहा हूं, जहां मैं काम कर रही हूं, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रही हूं। क्योंकि आपको मालूम है भारतीय संस्कृति में ये बात कही गई है, देना ही लेना है, जिस चीज को ब्रह्मा कुमारी बहुत प्रैक्टिकली इस बात को मानते हैं कि देना ही लेना है। और एक बहुत पुराना सेइंग है कि गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट, आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा। तो व्हाट आई एम गिविंग, आप देखिए, जब आप किसी और जब आप अपना वर्क करते हैं, वर्क करने से केवल ऑर्गेनाइजेशन की ही पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ती है, आपकी लाइफ में भी एनरिचमेंट आती है। आप अगर बहुत दिल से काम करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, आपको संतुष्टता मिलती है। मैं एक मिसाल बहुत बार लोगों को दिया करती हूं, हो सकता है आप लोगों में से पहले भी कईयों ने सुना होगा, कि एक बार जो है बहुत सारे व्यक्ति जो एयर इंडिया में कार्य करने वाले, उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हैं, तो उसमें से एक ने जवाब दिया कि आई वर्क फॉर एयर इंडिया, दूसरे ने कहा आई वर्क विद एयर इंडिया, और तीसरे ने कहा आई एम एन एयर इंडियन। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है? एक ने कहा मैं एयर इंडिया के लिए काम करता हूं, आई वर्क फॉर एयर इंडिया। दूसरे ने कहा आई वर्क विद एयर इंडिया, मैं एयर इंडिया के साथ काम करता हूं, और तीसरे ने कहा मैं एयर इंडियन हूं। क्या फर्क है, क्या फर्क है? यस, सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा। क्यों? क्योंकि उसमें, बोल रहे हैं पीछे वाले, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें अपनापन है। तो आप सोचिए कि क्या हम अपने वर्क प्लेस को उतना ही प्यार करते हैं जितना हमें करना चाहिए? लाइफ को एंजॉय हमें करना है, हमें लाइफ को बहुत एंजॉय करना है। कहते हैं बी ए रॉक स्टार इन व्हाट एवर यू डू। आपने मार्टिन लूथर किंग का एग्जाम्पल नाम सुना होगा, उसने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि यदि आपको एक गली भी साफ करने के लिए कहा जाए, एक स्ट्रीट को साफ करने के लिए कहा जाए, वो स्ट्रीट भी ऐसे साफ करनी चाहिए जैसे बिदोवन, जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन हुआ, उसने कॉम्पोजिशन बनाई, या माइकल एंजेलो जिस जो बहुत बड़ा पेंटर और आर्टिस्ट था जिसकी पेंटिंग्स बहुत फेमस हैं, जैसे उन्होंने अपनी बहुत क्रिएटिव आर्ट से एक ऐसी अच्छी यूनिक चीजें बनाई, तो ऐसे ही गली भी यदि साफ करने के लिए कहा जाए तो वो सफाई भी ऐसी करनी चाहिए। तो वी शुड बी रॉक स्टार इन वॉट एवर वी आर वर्किंग। आप देखिए, मैं आपको बताती हूं, आप सब यहां पर आए हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान में, ये इसका एक कैंपस है, ज्ञान सरोवर जिसको हम कहते हैं। इस कैंपस में आप देख रहे होंगे हमारे भाई बहन जो कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, और आप में से कईयों ने इस बात को कहा भी है, वो क्यों उस डेडिकेशन से करते हैं, क्यों उस डेडिकेशन से करते हैं? क्यों? क्योंकि परमात्मा से जो उन्हें प्यार मिला है, परमात्मा से जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान और प्यार वो उनकी लाइफ में आ चुका है, और उस प्यार की खातिर, उस ज्ञान की खातिर जो उनके जीवन में परिवर्तन आए हैं, जिनसे उनकी लाइफ बहुत अच्छी लाइफ बन गई, इट्स ए गुड लाइफ, इट्स ए एग्जेम्पलरी लाइफ, उसकी खातिर आज वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे बर्तन साफ करना है, या मुझे बर्तन धोना है, या मुझे बर्तन पोंछना है, या मुझे झाड़ू लगानी है, वो ये नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए जो भी हम कार्य करते हैं, हमें जो भी प्रोफेशन मिला हुआ है, उस प्रोफेशन को हम बहुत अच्छी रीति से करें। कहते एवरी जर्नी ऑफ लाइफ इज एंजॉयबल इफ यू एंजॉय एट एवरी स्टेप। इसी प्रकार वर्क जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है, इट इज, ये जो जर्नी है, इट्स मोर एंजॉयबल व्हेन यू एंजॉय इट्स एवरी स्टेप, द टास्क, द चैलेंजेस, द अपॉर्चुनिटीज, द पीपल, द सिचुएशन। आपका वो कार्य, वो वर्क प्लेस आपके लिए एंजॉय देने का साधन बन जाएगा यदि हर कदम पे आप उसको एक्सेप्ट करते चलेंगे, एंजॉय करेंगे। व्यक्ति कैसा भी है, ओके फाइन, सिचुएशन कैसी भी है, नो प्रॉब्लम, कोई तकलीफ आ गई, एक्सेप्ट द चैलेंज। अगर हम उसको लेते जाएंगे तो वही आपकी जो वर्क प्लेस और वर्क है वो आपके लिए एंजॉयबल बन जाएगा। एंड नेक्स्ट इज लव योर लाइफ। जैसे वर्क को प्यार करना है ना, ऐसे अपनी लाइफ को भी प्यार करो, उसको नेगलेक्ट मत करो। आप, मैं समझती जो बैठे हैं, लगभग सभी ने फ्लाइट में यात्रा की होगी, और फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट होती है, जब आप बैठते हैं तो उसमें एक अनाउंसमेंट होती है। किसको ध्यान में वो अनाउंसमेंट, किसी को ध्यान में एक अनाउंसमेंट होती है, और वो अनाउंसमेंट क्या होती है? पुट द ऑक्सीजन माउथ ऑन योर फेस, ऑक्सीजन मास्क ऑन योर फेस बिफोर दूसरों की हेल्प करने से पहले अपने मुंह पे आप ऑक्सीजन का मास्क पहनना क्यों होती है? लॉजिक इज वेरी क्लियर. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? अगर आप ठीक से श्वास नहीं ले पाएंगे तो आपके अराउंड जो है आप उसको क्या मदद कर पाएंगे? अगर मैं ही फिट नहीं हूं तो हम दूसरों को फिट कैसे कर पाएंगे? इसीलिए हमें क्या करना है, हमें समय निकालना है अपने लिए. जैसे मैंने पहले कहा ना, हमें अपने लिए टाइम नहीं है, बाकी सब चीजों के लिए टाइम है. अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, अपनी केयर करो. और ये भी हम आपको बताना चाहते हैं, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस. इट इज नॉट सेल्फिशनेस, क्योंकि ये जो सेल्फ केयर है ये बहुत जरूरी है. जब हम अपने आप को कुछ समय देकर एम्पावर करेंगे तभी तो हम दूसरों को एम्पावर कर सकेंगे. तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और जैसे हमने आपको कहा, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस. तो ये कोई स्वार्थ की बात नहीं है, ये हम अपने को एनरिच करते हैं, हम अपने को एम्पावर करते हैं, हम अपने को नरिश करते हैं. और ये नरिशमेंट जो है इंटरनल भी है, एट द सेम टाइम ये फिजिकल लेवल पर भी होती है. क्योंकि हमारे यहाँ न केवल इंटरनल या माइंड की हेल्थ के लिए स्ट्रांग करने के लिए कहा जाता है, नॉट ओनली मेंटली हेल्दी और इंटेलेक्चुअली हेल्दी, बट यू हैव टू बी फिजिकली हेल्दी ऑल्सो. दोनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. आप देखते हैं यहाँ पर भोजन कैसा है, एकदम सात्विक भोजन. खाकर कितना अच्छा लगता है उस सात्विक भोजन को, और वो सात्विक भोजन कितनी हमको नरिशमेंट देता है. ये सात्विक भोजन है. और स्ट्रांग करने के लिए हमारे यहाँ पर दो तरीके हैं जो मैं आपको शेयर करूंगी अभी. तो हमें क्या बनना है, वी हैव टू वर्क स्मार्ट, वी हैव टू नॉट वर्क हार्ड. आप देख रहे हैं, मैं समझती हूँ हर एक कोई समझ सकता है वर्क स्मार्ट एंड वर्क हार्ड में क्या अंतर है. पहला वाला जमाना, वो कौवे को प्यास लगी, पत्थर डाल डाल के पानी ऊपर लाया, वो वर्क हार्ड है. अभी जमाना बदल गया है, पाइप लगा के पानी पी लो. तो आप क्या करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू वर्क हार्ड और वर्क स्मार्ट? वर्क स्मार्ट ना, तो वर्क स्मार्ट करना है तो लेजर टाइम भी आपको ज्यादा मिल पाएगा. नहीं तो हार्ड वर्क करते करते, ये सब स्ट्रगल करते करते हम टायर्ड हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स में आते आते, कॉन्ट्रडिक्शंस में आते, स्ट्रेस एक्यूमुलेट करते, मेंटल एग्जॉशन होती है. और जिससे जो हमारी क्रिएटिविटी है वो भी हमारी रिड्यूस हो जाती है. तो हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव सेल्फ थिंकिंग. वो पॉजिटिव सेल्फ थिंकिंग क्या है, मैं समझती हूँ अभी तक आप सबको मालूम पड़ चुका है. वो पॉजिटिव सेल्फ थिंकिंग क्या है, सामने आप देख रहे हैं, आप कर सकते हैं. यस, कौन करेगा आके, जो आप सामने, हाँ आइए. यस, जो करना हाथ खड़े, आइए साके आके खड़े हुए कौन के. आई लव माई सेल्फ. यस कीजिए, आप सबको बोलना है. फिर से बोलिए, आई लव माई सेल्फ. आई कैन डू वॉट आई वॉन्ट. अगर हम ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं, मैं ज्यादा नहीं आपको ये अभ्यास करा रही हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहती हूं, और वो क्या, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, ये पॉजिटिविटी के लिए हमारे दो टाइम फिक्स हैं ब्रह्मा कुमारी में. और वो दो टाइम कौन से हैं, एक है ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेला जो 4 से 5 का समय है, और इसको हम कहते हैं द टाइम ऑफ ब्लेसिंग्स, द टाइम ऑफ गेटिंग नेक्टर. ये परमात्मा से वरदान रूपी अमृत पाने का समय है. उस समय आप प्राप्त कीजिए, करके देखिए। आप यहां आई है ना, कई सुबह आए थे आज, लेकिन आज शायद कल थके हुए थे, संख्या कम थी। तो मैं आई इन्वाइट एवरीवन, मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ कल सवेरे अमृत वेले के लिए। कल सवेरे सभी आइए यहां पर, एग्जैक्ट 4:15 वी विल स्टार्ट। ठीक है, 15 मिनट का आपको ग्रेस दिया, तो आप 4:15 पर यहां पहुंच जाएंगे और हम सब मिलकर यहां अमृत वेला करेंगे। और हम उस परमात्मा से जो सर्वशक्तिमान है, वो हमें शक्ति देता है। ये भोजन है, दिस इज द फूड, फूड फॉर नरिशिंग द सोल। और अगर वो प्राप्त नहीं किया तो नेचुरल इंटरनल वीकनेस तो होगी ना, और जो इंटरनल वीकनेस होगी तो नेचुरल बाहर की वीकनेस तो आएगी ना। और दूसरा हमारा समय है जिसको हम कहते हैं नुमा शाम का समय है। नुमा शाम माना इवनिंग का समय, जो ये अभी समय है जिसके लिए मैं जल्दी कर रही हूं, ये शाम का समय। जैसे मुझे याद आता है कि कभी कभी हम अपने बड़ों से सुना करते थे कि संध्या के समय जो है, सब क्या करते हैं, जो एंजल्स होते हैं या जो देवता लोग होते हैं, वो घूमने के लिए निकलते हैं। ये हम सुनते थे बचपन में कभी अपने बड़ों से। तो ये और संध्या का समय आपको मालूम है कि घरों में आमतौर से लोग क्या करते हैं, दियाबाती करते हैं, है ना। और इसीलिए पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, वो जब लाइट जलती थी ना तो वो हाथ जोड़ लिया करते थे। और हम कहते थे ये क्या अंधविश्वास है, लेकिन उनकी हर बात में कुछ ना कुछ एक मीनिंग था। तो ये जो नुमा शाम का समय है, ये संध्या का समय है, ये समय भी परमात्मा से प्राप्त करने का है। तो मेरी आपसे एक गुजारिश ये होगी, एक छोटी सी आपसे एक सजेशन होगी, हम्बल सजेशन, कि आप यहां से अपने मन में ये फिक्स करके जाएं कि मुझे इन दो समय पर, चाहे 10 मिनट ही सही टू बिगिन विद, मुझे उस समय जरूर थोड़ा सा अपने आप को अकेला बैठ के मेडिटेशन करना है। उस समय क्या करो, एकदम शांत होके सो द सीड ऑफ पीस इनसाइड यू, अपने अंदर वो शांति का बीज बो दो और उसको पॉजिटिव एनर्जीज का जल दो, उसको सींचो और वो अंकुरित होगा। किस रूप में, आपके अंदर शीतलता, शांति, स्टेबिलिटी, स्थिरता, संतुष्टता, खुशी, ये सब आपके अंदर आने लगेगी। तो मैं समझती हूँ समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं यही समाप्त करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आने वाला सेशन हमारा बहुत सुंदर मेडिटेशन का सेशन है। और यहाँ एक मिनट के लिए, जस्ट फॉर ए मिनट, क्रिएट ए थॉट इन योर माइंड, आई एम पीस, मैं शांत स्वरूप हूं। I am peace. P-E-E-C-E. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.